الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مفتاح القرآن میں سے سبق نمبر 33 صفحہ نمبر 95 لیسن نمبر 33 پیج نمبر 95 اولو اولی اولات ان علامتوں کو دیکھیں گے یہ کہاں آتی ہیں پہلی چار علامتوں پہ تو آپ کا ذا کا مخرج اچھا ہو جائے گا سارے اس کو دیکھ کے پڑھیں لگ رہا ہے نا نورانی قاعدے کی کلاس ہے تو یہ سب اصل میں ایک ہی فیملی ہے کوئی خالہ ہے کوئی ماموں ہے کوئی بھانجا بھانجی ہے تو یہ مذکر مؤنث اور جمع کے سارے سیگے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں دو طرح کی چیزیں بیسیکلی اگر آپ آج کے ٹاپک کو اوپر ہیڈر میں ہی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں دو بریکٹس لگا لیں پہلی بریکٹ شروع کریں زو سے اور ختم کریں ذاتا سے ٹھیک ہے یہ کیٹیگری ہے دوسرا پیئر اولو سے اولاتو تک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بیسیکلی دو چیزیں ہیں لیکن ان علامات ساری کی ساری جو بھی ہے زو یا اولو ٹھیک ہے زا یا اولی اولاتی ذات اولات سب ان سب کا ترجمہ صاحب والا والی والے والیاں کیا جاتا ہے اردو میں جیسے کہتے ہیں نا علم والا مال والا دولت والا کبر والا یا اردو میں ہم کہتے ہیں صاحب ثروت صاحب شجاعت تو اس میں کسی چیز کو اون کرنے کا ایک میننگ آتا ہے اون سے مراد پیسہ روپیہ نہیں کسی کی پرسنالٹی موسٹلی کسی کو ہم بہادری کی وجہ سے کسی ایک خاص نام سے یاد کر لیتے ہیں تو ان سب میں سے پہلی تین زو زا اور زی یہ تینوں علامتیں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے واحد مذکر کے لیے واحد کیا ہوتا ہے ایک مذکر کیا ہوتا ہے جو مؤنث نہ ہو ٹھیک ہے اور ترجمہ والا یا پھر صاحب ہوتا ہے مثلا ذو الفضلی فضل والا ہاں اگر آپ خالی لفظ الفضل دیکھیں تو وہ کیا ہے فضل لیکن ذو لگ کے یہ اسم بن گیا کہ یہ فضل والا کوئی شخص ہے ذو انتقام انتقام لینے والا زا مالن مال والا یا صاحب مال اب آپ دیکھیں کہ زا مال جو ہے نا اس کا ترجمہ آپ صاحب مال بھی کر سکتے ہیں اور مال والا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو چیز کسی کی ہوتی ہے وہ اس کا پھر مالک ہی ہوتا ہے نا تو والا مال والا دولت والا حسن والا کہہ دیں یا صاحب مال صاحب دولت صاحب حسن دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے جملے کی صرف ادائیگی کا فرق ہے پھر آگے دیکھیں ذی مسغبہ ذی علم ذی مسغبہ بھوک والا اور ذی علم علم والا سورۃ بقرہ کی آیت 105 میں آتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو یوں پڑھ دیں اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے بڑا تو بھی ٹھیک ہے نا تو والا یا صاحب دونوں کا ترجمہ آپس میں سوئچ ہو سکتا ہے اسی طرح آل عمران آیت نمبر 4 واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے اور اگر اس کو اور شستہ اردو میں بولیں اور اللہ تعالیٰ صاحب انتقام ہے تو بھی ٹھیک ہوگا نا سورۃ الانعام آیت 147 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ بس اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں کہ تیرا رب وسیع رحمت والا ہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور تم قرابت والے کو اس کا حق دے دو سورت یوسف آیت 76 وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ضرور ہے کون ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات العلیم تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذو اور ذا پہلی بات واحد دوسری بات مذکر اور تیسری بات یہ کہ ان کا ترجمہ صاحب یا والا آئے گا کیا ان تینوں کا ذو زا اور زی کا ترجمہ والی آ سکتا ہے والیاں آ سکتا ہے تو پھر آپ ان تین کو دہراتے ہوئے کیا کیا بولیں گے نمبر ایک یہ تینوں علامتیں واحد کی ہیں یہ تینوں علامتیں مذکر کی ہیں ان تینوں کا ترجمہ والا یا صاحب ہے بس اس میں مؤنث نہیں ہے آگے ہم دیکھیں گے ذاتی बेसिकली ज़ाता अलग आता है, लेकिन जब लिखने में दूसरे से मिलाते हैं तो भी ये ज़ाती बन जाता है। ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा वाली से किया जाता है। ठीक है, ये असल में ज़ू से तानीस है। अगर आप ऊपर देखें तो ज़ू या ज़ा, बेसिकली ज़ू ज़ा ज़ी भी एक ही चीज़ है, ज़ा है वो, लेकिन सेंस बदल जाती है। जैसे आप पर आपने देखा है वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल, एक जगह ज़ुल फ़ज़ल आ गया, ज़ुन्तकाम, ज़ू रहमा, लेकिन आगे आप देख रहे हैं ज़ल क़ुरबा, तो अब आप सवाल करें कि वाती ज़ुल क़ुरबा क्यों नहीं है। पढ़ के देखें, ज़ुल क़ुरबा पढ़ना मुश्किल है या ज़ल क़ुरबा पढ़ना मुश्किल है? ज़ू मुश्किल है ना, तो ज़ू ज़ा में बदल गई। इसी तरह आप देखिए वफ़ो का कुल्ली ज़ी इल्मेन अलीम, इल्मेन के नीचे ज़ेर है ना, तो इसलिए ज़ी उसके साथ मिलके पढ़ना आसान है। और अगर आप कहें वफ़ो का कुल्ली ज़ू इल्मेन अलीम, और इसमें असल में फ़ाइल मफूल का भी फ़र्क होता है, जो भी आपको ज़रूरत नहीं है समझने की, लेकिन बहरहाल ज़ू ज़ा ज़ी ही के पैरेलल जब एक मुअन्नस का सीगा लिखते हैं तो वो ज़ात आएगा। ठीक है, ज़ाता। तो फ़र्क दोनों में क्या है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का है, दोनों वाहिद के हैं, दोनों का मतलब किसी चीज़ को ओन करना, वाला इसकी जगह यहाँ वाली आ गया। मसलन ज़ाता अल वाहिद, तख्तों वाली, ये क्या थी, कुरान में कहाँ आया है? जी बताइए, कश्ती नूह के बारे में कि वो कश्ती तख्तों वाली थी, यानी तख्तियाँ जोड़ के बनी हुई थी। ज़ाता लहब, शोले वाली, कौन क्यों ज़ाता आ गया लहब के साथ? लहब मुअन्नस है, शाबाश। ज़ाती शौका, कांटे वाली, क्यों आया? शौका मुअन्नस है, बिल्कुल ठीक। कहाँ आया ये, कहाँ लफ्ज़ आया कुरान में, क्या है, क्यों है? दो गिरोहों की बात थी, हथियारों वाला गिरोह, इससे मुराद अबू जहल का ग्रुप था, ना के अबू सुफियान का। ज़ात हमलिन, हमल वाली, ये कहाँ आया कुरान में? नाम पढ़ते याद आता है कुछ? पहली मिसाल देखिए सूरत कमर आयत नंबर 13 है, व हमल नाहु अला ज़ाती अलवाहिम व दुसुर, और हमने उसे सवार किया, और हमने उसे सवार किया तख्तों और मेखों वाली कश्ती पर। ठीक है, दुसुर कहते हैं कीलों को अरबी में, तो हज़रत नूह की कश्ती की तरफ इशारा है। अगली मिसाल है सूरह लहब की आयत नंबर 3, सयसला ज़ात लहब, अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा, जहन्नुम की तरफ इशारा है। सूरह बुरूज की आयत नंबर 5 है, अन नारी ज़ातिल वुकूद, वो आग जो ईंधन वाली है। ये कौन सी आग का तज़किरा था भला, जो असहाबे उखदूद के लिए बनाई थी, जो घाटियाँ खोदी गई थी? सूरह बुरूज का नाम आते ही आपको वो वाक़या याद आ जाना चाहिए कि जब लोगों ने अल्लाह को एक माना तो उस वक़्त के जालिम बादशाह ने बड़ी बड़ी डिचिस खुदवाई, खाई खाई खाइयाँ खुदवाई, और उसमें ईंधन भरा और आग लगा के लोगों को उसमें फेंक दिया। ठीक है, तो उसी आग का इधर तज़किरा। उलू या ऊली, ये दोनों अल्फाज जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क क्या है इसका और उसका, वाहिद और जमा का? तो आप कह सकते हैं कि वाहिद हो तो ज़ू या ज़ाता, ठीक है, ज़ू हो वाहिद तो उसकी जमा होगी उलू और उली, ठीक है, और अगर वाहिद हो ज़ाता तो जमा क्या होगी, उलातू। ठीक है, तो पहले देखते हैं उलू और उली को। ये दोनों अल्फाज जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका तर्जमा वाले किया जाता है। क्या इसका तर्जमा वाला किया जा सकता है? जी आप बताएं असमत भाजी, नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाला वाहिद है, तो वाले। मसलन उलू कुव्वतिन, अच्छा इसको पढ़ना भी देखे, ये ऊ को खींचते नहीं है, उलू नहीं कहते, उलू उलू, लाम पे लाम के आगे तो मद असली है, लेकिन अलिफ के बाद जो वाव है वो खाली है, तो पढ़ना थोड़ा सा लोगों को ये ट्रिकी लगता है। तो उलू कुव्वतिन, ताकत वाले, उलुल कुर्बा, कराबत वाले। अच्छा अब आप ज़रा उलुल कुर्बा को वाहिद के साथ करके देखें तो कैसी साउंड आती है। ना मानी पता हो तो गलतियां कर सकते हैं ना इंसान। अगर आप कर दें, पीछे हमने पढ़ा था ना ज़ल कुर्बा, तो अब अगर आप जो लफ्ज़ इधर है कुर्बा, तो इसके साथ आप पढ़ देते हैं ज़ू कुर्बा, तो ठीक हो जाएगा? जी बताइए, जू या जा कुर्बा पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पीछे भी आप देखिए कि आती जल कुर्बा, वहाँ सेम लफ्ज़ था कुर्बा, तो इसका मतलब ये कि कुर्बा असल पता है क्या है कि लफ्ज़ के नाते से ये क्या है, वाहिद है, लेकिन देखा जाए तो कराबत वाले ख़ानदान के लोग कुर्बत वाले एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो उलुल कुर्बा भी कह सकते हैं। फ़र्क इसमें क्या है, उलू से पहले बाद में जब कुर्बा आ गया उलुल कुर्बा, और वहाँ कहता है ज़ल कुर्बा, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों की साउंड में, तो दोनों आ सकते हैं। फिर इसी तरह देखिए, उलिल अबसार आँखों वाले, उलिल अलबाब अक़ल वाले। सूरत नमल आयत 33 में आता है, क़ालू नहन उलू कुव्वतिन व उलू बसिन शदीद, उन्होंने कहा हम ताकत वाले भी हैं और सख्त जंग करने वाले हैं। किसने कहा था जी, सोचिए जल्दी से। सूरत नमल पढ़ के किसका जिक्र आता है जहन में? मलका सबा का। आगे देखिए सूरत तलाक आयत नंबर 10, फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, बस तुम अल्लाह से डरो ए अकल वालो। ये अलबाब क्या है भाई जी? तो है तबस्सुम, दरवाज़ों वाले। अलबाब अकल को क्यों कहते हैं जी? फायजा लुब से है, लुब लाम बाब, लुब कहते हैं मगज़ को, गुदा जो खाते हैं बकरे का या मुर्गी का। फिर आगे देखिए सूरत आल इमरान आयत नंबर 13, 13 है, इन नफी जाल कला इबरत अली उलिल अबसार, बेशक इसमें यकीनन इबरत है आँखों वाले, आँखों वालों के लिए। तो खुलासा क्या है, जू जा जी, इसके पैरेलल आप लिख लीजिए उलू और उली, ठीक है। फिर आगे हमने देख पीछे देखा था जाता, तो अब इसकी जमा देखते हैं उलातू। ये लफ्ज़ जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और तर्जमा वालियाँ किया जाता है, ठीक है। मसलन सूरत तल्लाक की आयत नंबर 4 में आता है, व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अय्यदाना हमलहुन्ना, और हमल वाली औरतों की इद्दत ये है कि वो औरतें अपना बच्चा जने, ठीक है। तो अहमाल जमा है, इसलिए यहाँ उलात आया। अच्छा, अहमाल लफ्ज़ देखिए तो इसमें हालांकि कोई मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जाती, तो ये कौन सा मुअन्नस है? सिमाई, क्योंकि औरत ही प्रेग्नेंट होती है ना, मुज़क्कर का तो इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो इसलिए फिर यहाँ उलुल अहमाल नहीं कहा गया बल्कि उलातुल अहमाल कहा गया। कितनों को ये बात समझ आई? चले अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखें सूरत तलाक ही की आयत नंबर 6, व इन कुन्ना उलाति हमलिन फ़ानफ़िकू अलैहिन्न हत्ता यदाना हमलहुन्ना, और वो औरतें जिन्हें तुमने तलाक दे दी हो अगर वो हमल वालियाँ हों तो इनको खर्च दो यहाँ तक कि वो अपना बच्चा जने। सेम बात ही इसमें भी। अब एक छोटा सा नोट देखिएगा कि दो मुज़क्कर, हमने वाहिद और जमा तो कर लिया ना, तो तस्निया में क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है ना जहन में, तो यहाँ फिर उसका नोट दिया गया है कि दो मुज़क्कर के लिए ज़वा और ज़वई आता है। फ़र्क है उसमें और इसमें कि नहीं? ज़वा, वाव पे ज़बर है, वहाँ फ़र्क था। दो मुज़क्कर हों तो ज़वा या ज़वई आता है, और दो मुअन्नस होंगी तो ज़वाता और ज़वातई इस्तेमाल होता है, और बहुत कम इस्तेमाल हुआ है ये कुरान पाक में। इसकी मिसालें देख लेते हैं, ज़वा अदलिन दो अदल करने वाले, ज़वाता अफनान दोनों जन्नत शाखों वाली, ये सूरत रहमान में आता है। पहली मिसाल देख ले सूरह मायदा की आयत 95, 95 है, यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, इसका फैसला करे तुमसे दो अदल वाले, वाशहिदु ज़वाई अदलिन मिनकुम, और गवाह बना लो अपने में से दो अदल करने वालों को, सूरत अल्लाह की आयत नंबर 2 है। और सूरत सबा की आयत 16, 16, ज़वातई उकुलिन खमतिन, दोनों बदमज़ा मेवों वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। कौन दोहराई कराएगा इस पूरे टॉपिक की जी? तबस्सुम आप करवाइए, सब आपका साथ देंगे, लेकिन पहले आपकी आवाज़ आनी चाहिए।
ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल की जाती है और वालियाँ होता है।
वाली।
ये दोनों अल्फाज जमा मुज़क्किर के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका तर्जमा वाले किया जाता है। उला اولاتو یہ لفظ جمع مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ والیاں کیا جاتا ہے. نوٹ, دو مذکر کے لیے زوات زوی اور دو مونس کے لیے زواتا واتی استعمال ہوتا ہے.
کیا یہ مستقبل کی ایک اچھی ٹیچر بنے گی؟ جی کمنٹس دیجیے, ریٹ کریں ان کو. جی آسیہ, پہلے یہ بتائیں کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے. جی ڈر کیوں گئے ہیں بتائیے. جی صبیہ, آپ نے ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے نا بریک میں, اس لیے بول رہی ہے. جی آپ
تھوڑا سا دیکھا نہیں, وہ دیکھ کے پڑھنی تھی کیا, تھوڑا سا وہی
ریڈنگ اسٹائل لگ رہا تھا نا آپ کو, کنونسنگ اسٹائل. ٹیچر ہمیشہ آئی کانٹیکٹ کیسا بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو سکھائیں گے آپ کو. بہرحال ٹھیک ہے, لوگ ہمیشہ فوکس کب کرتے ہیں جب آپ اپنے لفظوں میں بات کرتے ہیں. اگر میں یوں دیکھ کے پڑھوں گی نا تو آپ سو جائیں گے. لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے, سب کو کلیئر ہے. کوئی کویشچن؟ جی عصمت پا جی کوئی کویشچن؟ لا خوف علیہم ولا یحزن, کوئی غم اور فکر ہی نہیں ہے آپ کو, ہاں چلے ٹھیک ہے الحمد للہ. اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسرسائز آ رہی ہے, اس کو کرنا ہے. میرا خیال ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ایکسرسائز ہے, اس کے بعد صرف ایک رہ جائے گی جو پورے کی. اور آپ کو پتہ جب یہ بک پوری ہوگی تو کیا ہونا ہے, آپ خود عقل مند ہیں, بالکل ہوگا آپ کا ٹیسٹ اور ابھی ہوگا جلدی سے, کیونکہ لیٹ کریں گے تو بھول جائے گا آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے چلیے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.